समय में ज्यादा आते हैं, जिस उपयोग को एकाग्र
लेकिन उपयोग की स्थिरता का नाम याद है, उपयोग की एकाग्रता का नाम याद करना है। लिखा है था माता को करने के कर्म भात जीव के रुकमाई और मनवा के बाजार में ये तो सभी लाल जी की पंक्तियाँ हैं। क्या कहा माता को करने के जीव के मुखवाई और मनवा के बाजार में ये तो सुमिरनाई। और फिर सभी लाल जी आगे क्या कहते हैं माला चेतन को कहे, क्या कहती है माला चेतन से, ये उसे क्या कह रही है माला चेतन तो कहे काहे फिरावे होए और मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तो। माला कह रही है कि मेरे को क्यों फेरता है, अपने मन को क्यों नहीं फेरता है, उपयोग को क्यों नहीं बदलता है, जो उपयोग बाहर की तरफ है उसे फेर कर अंदर की तरफ क्यों नहीं ले जाता है। तो यदि अपने उपयोग को अंदर की तरफ ले जाएगा तो तेरे को मुक्ति की प्राप्ति होगी। सोचने क्या चाहता है तो उपयोग की एकाग्रता पूर्वक यहाँ हम बात कर रहे हैं श्रद्धा के संदर्भ में। आत्मा का इस सुख प्राप्ति में है, सुख मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए और मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन का स्वरूप सच्ची श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं, भरोसे को सम्यक दर्शन कहते हैं, विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। विश्वास ही सम्यक दर्शन है बस। कैसा विश्वास? भगवान के प्रति विश्वास, जिन्होंने भगवान की वाणी पर विश्वास, जो बातें आलोक ने कही है वो बात गलत नहीं हो सकती, जो बात शास्त्र में कही गई है वो बात सच्ची है, हमें पूरा भरोसा है। और बातों की क्या बात करें, हम लोगों को आत्मा पर भरोसा नहीं होता, आत्मा भी है इस बात की भी भरोसा नहीं होता। कैसे आश्चर्य की बात है, अपने आप से भरोसा नहीं, हमें इतना भरोसा नहीं है कि मैं हूँ अपने अस्तित्व के बारे में भला कोई व्यक्ति कैसे चिंता कर सकता है। लेकिन जगत में ऐसी मूर्खता हम सभी के माध्यम से की जा रही है, सभी ऐसे मूर्ख बने चल रहे हैं हम लोग। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए यहाँ दूसरे खंड में जो परिभाषा दी थी कल हम उसके बारे में बात कर रहे थे। पर द्रव्यन से भिन्न आपने रुचि सम्यक बना है, आप रूप को जान करो तो सम्यक ज्ञान बना है। क्या कह रहे पर द्रव्यन से भिन्न आपने रुचि, हमारी रुचि जैसी विषय रचाएं दिखती है। योगेंद्र देव आचार्य कहते हैं जो मन रमे विषयानी में, यदि आत्मा में क्यों रमे। क्या कह रहे हैं, ये जीव जिस तरह तेरा मन विषयों में रमण करता है, विषयों को चाहता है, लोगों को चाहता है, यदि उसका कुछ परसेंट भी यदि आत्मा को चाहे तो शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। कितनी चाह है हमारी, कितनी तड़प है, कितनी जिज्ञासा है किसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में जानने के संदर्भ में। आप देखिए दुनिया की बातों को जानने का कितना भाव होता है हमारे हृदय, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कैसा होता है, ये चीज कितने की आती है, इसका कितना चार्ज रहता है, यहाँ घूमेंगे तो कितने दिन में घूम लेंगे, इसको यही दिखता रहता है। ठीक है, ये आत्मा का जानने का रस है क्या, अपने आप को जानने का, अनादि काल से अपने आप को नहीं जाना है और अपने आप को भूल के संसार में परिक्रमण कर रहा है, अपने आप को जानने की रुचि है क्या, इतनी सी रुचि मात्र तो सम्यक दर्शन कहते हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, आप लोग कहेंगे ना हमारी बहुत रुचि है, रुचि नहीं है, रुचि है तब तो इतना समय निकाल करके कितने 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 35-40 मील से 50-60 किलोमीटर दूर सबसे आते हैं सब यहाँ, इतनी इतनी दूरी से बिना रुचि के आया जाता है। एक घंटे के ड्राइविंग करके यहाँ आना तो मेरा सा काम है, एक घंटा आने में लगे, एक घंटा जाने में लगे, एक घंटा यहाँ दे रहे, मैंने 4-5 घंटा लगा है, इतनी मदद किसके पास में है? बिना रुचि के नहीं होता है, हमारी बहुत रुचि है। आपको जो कुछ भी कहना है उन लोगों के बारे में कहो जो यहाँ नहीं आते। लेकिन भाई उनको तो क्या कहें हम, उनके बारे में बात करने से क्या लाभ, जो यहाँ आए ही नहीं है, जो आते ही नहीं है, और फिर किसी के पीठ पीछे बात करना अच्छी बात भी तो नहीं है। तो हम तो जो बात करते हैं सामने बात करते हैं, सामने वालों से बात करते हैं, जो कहना सामने कहना, नहीं जैसी हमने सामने कह दी जैसे बात की, जैसे तो ठीक है, नहीं जैसी तो ठीक है, हमने तो कह दी हमारी बात। तो आपकी जो रुचि है सच में वो रुचि किधर की है? जैसे कल आप कुछ पंक्ति इस तरह की बता रहे थे, वो तराजू का तोड़ने वाली बात, इसी तरह की कुछ बातें हम सोचते हैं, हमारी रुचि ज्यादा है। अभी आपकी रुचि का जवाब किधर है, इसको अपन कैसे सोचे? आप देखो दिन भर में कितना व्यवहार, 2 घंटा सुबह को अध्याय करते हैं, 2 घंटा शाम को करते हैं, इतना टाइम देते हैं, दिन भर में 6 घंटा हमारा इधर जाता है। आप समझते क्या है कितने धर्मा धुमा है हमारा है आपको? हाँ ये बहुत अच्छी बात है, 6 घंटा दिन भर में स्वाध्याय चंदन बनाना मंदिर भक्ति पूजा करने से यदि आप धर्मात्मा हो गए तो इसका मतलब 18 घंटे ये सब नहीं कर लेते मैंने पाप कर लेते पापा आत्मा क्यों नहीं कहलाना चाहते हो? इसका मतलब सीधा सही हुआ ना, ये लोग जो मार्केटिंग करते हैं ना, जो लोग क्या कहते हैं सेल्समैन नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहते हैं आगे बस में टाइम नहीं है तो ये बस में कोई व्यक्ति पहुंचता है अपनी टीम लेकर के फिर बदलाने के लिए और सारा प्लान दिखाता है वो जो व्यक्ति है वो मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए तो पता है वो क्या करते थे क्या कितना बिजी हुए बताओ सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ और आपको 9 बजे घर में वापस आता हूँ बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास में तो वो ये कहते हैं अच्छा इसका मतलब आप रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री है और चीज को इस तरह से शो करते हैं इसलिए आपने बिजी बताया तो बाकी मैंने फ्री है ना हमने आपसे पूछा कितना गर्म करते हैं कितना स्वाध्याय करते हैं कितना डिजाइन देते हैं कौन रुचि है सब दिन भर में 4 घंटा जाता है 5 घंटा दिन भर में जाता है इसका मतलब 18-19 घंटा आपका पाप ले जाता है किधर जाता है हमारा टाइम यदि 5 घंटा शुभ भाव करने से हम अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हैं तो 19 घंटा पाप करने से पापात्मा छोड़े प्रश्न ना करके देख रहे हैं ना दोनों चीजों में आप ये कह सकते हैं पंडित जी चाहते क्या अंधेरे में बैठ जाए आप क्या चाहते हो तो जुड़ाओगे हमारा कि नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं आपका उपयोग कहाँ रहता है चाहे घर में रहे चाहे मन में रहे जो नींद में समाए रहते हैं हर काम जगत के किया करे नैराग्य किसी से करते आपको क्या लगता है हमारा चक्रवर्ती की चर्चा आती है 8,000 वर्ष के लिए निकल गया जीवन भरी छोड़ करके इतना तो अपने को सबको पता है भरत चक्रवर्ती को 3 विश्व सूचनाएं एक बार मिली थी पता है आपको एक साल उसको जब वो राज करता था अयोध्या में उस समय एक बार 3 युग सूचनाएं नहीं लाई थी पिताजी को केवल ज्ञान हो गया ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया समुद्रण की रचना हो रही है दूसरे नंबर पर उसको तुरंत सूचना मिली पुत्र जन्म हुआ है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तीसरा सेनापति ने आकर उसको सूचना दी कि अपने वहां अयोध्या में चंद्र रत्न प्रकट हुआ है वहां आप चक्रवर्ती बनने वाले हैं अब चक्रवर्ती को बनना निश्चित हो गया है आपको 3 सूचनाएं मिली थी उसको 3 में से सबसे पहले क्या किया उसने सबसे पहले देवेंद्र ने उसके बाद में पुत्र जन्मोत्सव मनाया और फिर उसके बाद में चक्रवर्ती था ना, तो चक्रवर्ती की आराधना पूरी जो उनका समझा होता है पूजा जी, वो सब करने के उपरांत सिद्धि जी की निकल गया। ऐसा कहते हैं भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव के तपोनिधान में प्रथम श्रोता थे, मुख्य श्रोता थे सर्वप्रथम। इधर दिव्यधनी जितना प्रारंभ हुआ और ये चक्र रत्न लेकर के भाई साहब कहाँ चले गए दुनियादारी के राजपाट में जीतने के लिए? अब कितने लंबे टाइम, 60,000 वर्ष लग गए उसको जीतने, 6 घंटे को जीतने, और 60,000 वर्ष से वापस लौट करके आए और फिर जैसे दुनिया दिखनी की उपरी रहा हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है शायद समय दृष्टि हो गई, इतने धर्मात्मा हो गए, 6 घंटे जीतने के लिए तो क्या छोड़ करके, ये तो बताओ ऐसे व्यक्तियों को शास्त्र में धर्मात्मा कहा है, शायद सम्यक दृष्टि है, उसी भक्त से मोक्ष जाने वाले हैं। उसके अंदर की परिणति हर किसी व्यक्ति को समझ में आना ये बस की बात नहीं, हमारे घरे भीतर की समय दृष्टि का जीवन कैसा होता है, बड़ा अद्भुत जीवन होता है। अभी तो कहा हमने, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, लेकिन कहा रहते हैं मनिराज, कहा रहते हैं बता, मनिराज जिस घर में रहते हैं उपयोग में रहते हैं, अपने अंदर में रहते हैं, अन्य गुफा में मनिरा बसते, अनंत गुणों में केली करते, भजन की पंक्तियां इस तरह की, चैतन्य गुफा में विश्राम करते हैं, चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार करते हैं, जीवन का भगवान भजन की पंक्तियां इस तरह क्या करते हैं वो, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, हर निज में समाए रहते हैं, हर काम जगत के किया करे, करते सब काम, लेकिन अनित रह करके। वो कैसे अनित दशा होगी, वो कैसा भिन्न बना होगा, वो उसका कैसा स्वरूप होगा, इसके लिए रोहन राम जी यहाँ कहते हैं जन्म के भिन्न कमल है, समय व्यक्ति की कैसे दशा है, जन्म में रहते हुए भी कमल जिस तरह के जन्म से भिन्न रहता है, ऐसा समय व्यक्ति यानी जीवों का जीवन हुआ करता है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा में कौन बसता है, अपनापन तन्मयता रुचि किसके बात में जुड़ी हुई है, नाव किसके बात में है, अरे भोजन करें भोजन को अच्छा भी बताए, खीर खाए और खीर का स्वाद भी ले लें, स्वाद लेते हैं कि नहीं, किसका स्वाद लेते हैं, समय कृषि खीर खाते होंगे किसका स्वाद लेते होंगे, अच्छा मुनिराज जी खीर खाते होंगे किसका स्वाद लेते होंगे, खीर का स्वाद आता है या नहीं आता है, आता होगा निश्चित रूप से, इंद्रिया थोड़ी ना खराब हुई है, रत्ना इंद्रिय तो अपना काम करेगी ना, ज्ञान तो अपना काम करेगा ही, दिल को आता है स्वाद को आता है, लेकिन वो स्वाद रागात्मक स्वाद नहीं है, वो ज्ञानात्मक है, ना क्षमता भाव पूर्वक है, ज्ञान का ये मात्र है, अच्छे बड़े मन की रचना नहीं करते उससे, ऐसा जीवन होता है उसका। तो यहाँ श्रद्धा के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि सम्य दृष्टि जीव की रुचि माने सम्य दृष्टि जीव का अपनापन, माने सम्य दृष्टि जीव की श्रद्धा, उसकी तन्मयता, उसका अपनापन अपने में होता है, अपने में अपनापन, अपने में अपनापन करके वो अपने में चले गए, अपने में अपनापन अपने में जाने का रास्ता है, ठीक है। मैंने श्रद्धा का अर्थ कैसा नहीं लेना, भगवान बड़ा करते ही कल हमने अंतिम चरणों में थोड़ी बहुत बात की थी, लोगों को भरोसे का अर्थ ये भी बहुत लगता है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, फायदा हमारे को आप पर पूरा भरोसा है, किस बात पे भरोसा ही आप हमारा सहयोग करेंगे, कि भरोसा रखते हैं सहयोग की अपेक्षा क्यों रख रहा है, हम सहयोग को भरोसा समझते हैं, हमारे मन में भरोसे का अर्थ ये है कुछ न कुछ सहयोग हो, कुछ न कुछ विश्वास हो, हम कह रहे हैं ये विश्वास आपका गलत है, ये मिथ्या क्रांति है, भगवान को कुछ करते रहते हैं ही नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट है जैन धर्म कि भगवान की कृपा दर्शा दी। दूसरे धर्मों की अपेक्षा से जैन धर्म के महान है प्रधान धर्म की बात कही गई है वो सिर्फ इसलिए है यहाँ ईश्वर बनने की मान्यता है और ईश्वर के हाथ में कार्य जगत की बात नहीं है केवल धर्म है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है सारे धर्म की जो बागडोर है सब कंट्रोल है कंट्रोलिंग पावर सब ईश्वर के पास में है। कोई ना कोई ऐसा गॉड होगा जो सबको कंट्रोल करता होगा पर यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तुम ही तुम्हारा कंट्रोल करने वाले अक्षरधाम जहाँ बने हुए हैं ना वहाँ उन लोग स्टार्टिंग यहाँ करते हैं वहाँ एक ऐसी मूर्ति दिखाते हैं जिसमें आदमी अपने आप को बना रहा है मनुष्य अपना भाग्य निर्माता स्वयं है। जो कुछ भी परिस्थिति बनती है हमारी अपने आप से बनती है ये प्रधानता है। कण कण की स्वतंत्रता ये जैन दर्शन की विशेषता है किसी दर्शन में नहीं हर जीव भगवान बन सकता है ये जैन दर्शन की विशेषता है। जैनियों के भगवान हाथ के हाथ धर करके बैठे हाथ के हाथ धर करके ये सर्वोत्कृष्ट बना है ये बीज रास्ता है इतना भक्तों का भला नहीं करते शत्रुओं का संहार नहीं करते चलो तो समझ में आती है भक्तों का भला तो करना ही चाहिए ना तुमसे ना। शरण जो अपराधी को दे अरे अपराधी है भगवान केवल जी पंक्ति है पूजा की क्षेत्र की अपराधी को शरण देने वाला भगवान भी अपराधी है। कौन न्यायाधीश करेगा बताओ जो अपराधी को शरण देता हो कोई ईमानदार न्यायाधीश नहीं है मेरे उसमें न्याय जिसका नाम है जिसने जैसा किया हो उसको मेरे की सजा मिले ईमानदारी से वही तो न्याय है ना। अब हम कह रहे हैं आपने जैसे कर्म किए हैं आपको उसके हिसाब से आपका फल मिलेगा ये न्याय है इसे न्याय कहते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपने कोई भगवान को कुछ जवाबा इस्तेमाल नहीं करता है ना रिश्वत देता है भगवान को और तो आप रिश्वत भी देवे तो भी कुछ समझ में आती है बात कहते दुनिया में तो रिश्वत पहले देता है और यहाँ तो ऑप्शन देता है भगवान को भगवान ऐसा हो जाएगा ना तो जाऊंगा कंडीशन मैंने भगवान का हिस्सा भी होगा नहीं हाँ तो डॉक्टर के पास में जाता है तो फीस पहले से बाहर जमा कराता है फिर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है। कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप पैसा पहले मांगे उसके बाद में आगे मैंने दुनिया में तो इतना और भगवान के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं जब आगे से ऐसा करेंगे पहले चढ़ाएंगे और फिर भगवान से कहेंगे अरे नहीं यार हम ये नहीं कह रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं भगवान से शादी लड़नी नहीं है इतनी मिथ्या गांधी हो जाती है कभी कभी ऐसा लगता है ये पाप कर्म का हो जाए जिन जीवों के होता हो पाप कर्म का हो जाए जिनका तीव्र होता है उनको इस तरह की बातें जचती है ये जो बहि आत्मा का लक्षण आगे बताने वाले हैं माने ये जिन लोगों का पाप कर्म का उदय तीव्र होता है उन लोगों के ऐसे काम होते हुए देखे जाते हैं उनकी मिथ्या मानने द्वारा पूर्ण हो जाता है। एक बात भगवान तो कुछ करते नहीं है और हम गए कौन कौन से पार्षद के कितने क्षेत्र हैं हमारे इंडिया में पार्षद भगवान तो बहुत ज्यादा चलते हैं बहुत फेमस है समझ लीजिए आप नमस्कार करते कितने क्षेत्र है पार्षद के नाम से अंतरिक्ष पार्षद अरिंदा पार्षद जयसफर पार्षद मक्की पार्षद बरड़िया पार्षद और अन्वेंद्र पार्षद चौलेश्वर पार्षद सहसफर पार्षद चिंतामणि पार्षद पार्षद कितने पार्षद है पार्षद चूली जी के पार्षद है कोई शिखर जी के पार्षद है कोई गाँव के पार्षद है सब मतलब मेरे को लगता है क्या चक्कर है इसके पीछे ज्यादा जो है ना उनके फेमस होने के पीछे कारण लड़ने में बताऊंगी तो पार्श्वनाथ के बाद में तो महावीर स्वामी हुए वर्तमान में शासन तो महावीर स्वामी का चल रहा है फिर पार्श्वनाथ स्वामी इतने ज्यादा फेमस क्यों हो गए कैसे लगता है कि वो संकट में इतने वाले हमारी एक बहुत प्रसिद्ध स्तुति चलती है कि आप लोगों ने कभी सुनी हो तो निरंबर है समाज में वहाँ इंडिया में तो बहुत चलती है।
अपनी शरण भारत प्यारा मेटो मेटो जी संकट
बहुत इतनी फेमस है कि वाराणसी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े हैं तो हजारों लोगों को याद है, हजारों लोगों पूरे हिंदुस्तान में। और किस लिए? मेटो मेटो जी संकट हमारा, भगवान हमारा संकट मिट दो, भगवान हमारा संकट मिटा दे, इससे हमारा संकट मिट जाएगा। ऐसा समझते हैं क्या संकट है? पता जब कोई व्यक्ति उनसे पूछे तो पता है उस स्तुति में आगे जाकर के क्या लिखा है, उसमें लिखा है उसी स्तुति में,
जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी क्या है नहीं।
हम लोग उन्होंने तो गलत नहीं लिखा, वो संकट मिटने की बात कर रहे हैं, तुम क्या मेरा क्या संकट है? हम अपना संकट मिटाने के लिए भगवान के पास जाते हैं कि भगवान थोड़ा सा परिवार में ये संकट आ गया है, बिजनेस में संकट आ गया है, दुकानदारी में परेशानी आ गई है, थोड़ा सा संकट मिटा दो। लेकिन जगत के संकट की तुम्हें परवाह नहीं है, अलावा और क्या संकट है तुम्हारा, क्या संकट है तेरे को? कुछ चाहता है क्या चाहता है? स्वामी के दुख की फिर भगवान क्या नहीं है, अब संकट क्या?
तो जहाँ मन मरण होवे ऐसा यतन भारत प्यारा मेरो मेरो जी संकट हमारा।
हमारे जहाँ मरण का असली संकट है वो मिटाना है, उस पर दृष्टि है या नहीं है? बाकी के संकट कोई संकट नहीं है, बाकी के संकट तो टेम्परेरी संकट है, असली संकट तो अब आने वाला है जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में ऐसा संकट आएगा कि जो देखा नहीं है उस संकट को देखो ना, तो कौन सा संकट है उसमें आप चर्चा करते हैं ना, उसमें लाइन आगे आने वाली है, महादुख संकट निकट है। ऐसा कहा महादुख संकट निकट है, इसलिए मुझे ये संकट निकट है कि तूने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए संकट निकट है। जैन दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जहाँ इतनी स्वाधीनता है कि कोई दूसरा तो कर ही नहीं करता है, भगवान भी नहीं कर सकते, तेरा बुला बुला किसके सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। कभी कभी हम बोलते हैं त्रिलोकी नाथ, तीन लोग के नाथ, तीन लोग के नाथ कैसे हो गए? हमारे पड़ोस के अंदर दूसरे शर्मा जी रहते हैं, वो तो मानते ही नहीं है, तीन लोग के नाथ कैसे हो गए? अरे तीन लोग के नाथ है, तीन लोग के नाथ है, और तीनों लोग आपको मानता है क्या? वो जिससे रहिए इसमें दम क्या है यार, इस तरह की बात कह रहे हो तो सारे लोग तो नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले लोग आपको नहीं मानते हैं, तो पता है कैसे सिद्ध किया आचार्य ने उसको? उन्होंने कहा कि देखो अभी यहाँ का राजमंडी कॉलेज तो हर व्यक्ति जानता होगा उसको, जितने यूएस में रहने वाले लोग हैं यहाँ वो लोग सब जानते होंगे उसको, जो लोग बिल्कुल हीन है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, नाम नहीं है, उन लोगों को भी पता होगा कौन है राष्ट्रपति? नहीं पता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, मैंने पता है वहां पर हमारे इंडिया में थोड़े ही समय पहले मैंने सभा में एकदम ऐसा पूछ दिया, मैंने कहा हमारे राष्ट्रपति कौन है? आश्चर्य हुआ, आप पढ़े लिखे बड़े राजनीति के उन लोगों को तो खबर है, लेकिन 90% लेडीज को मालूम नहीं है कि राजनीति को। बोलो आप क्या हाल है देश तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे को ये बात बताओ कि आपको पता नहीं है कि वो हिंदुस्तान का राजा है या नहीं, हिंदुस्तान का नाम है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है सामान्य लोग नहीं माने तो, लेकिन अच्छे मेहमान सामान्य लोग ऑफिसर जो है IAS ऑफिसर है, हाई ग्रेड के हैं, अच्छे जो मिनिस्टर है, उन लोगों की निगाह में वो अधिकारी है या नहीं, वो मालिक है या नहीं है, वो लोग मानते हैं या नहीं। तो हम कह रहे हैं कि ये सामान्य रिक्शे वाले को भी नहीं पता है, टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को भी नहीं पता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी दशा इस प्रकार की है, हम ये कह रहे हैं पूर्व लोग में इंद्राजीत भगवान महावीर की पूजन भक्ति करते हैं, अरण्य परमात्मा को मानते हैं, मध्य लोक में चक्रवर्ती आदि सम्राटों के चरणों में झुकते हैं, और अधो लोक के भवनवासी आदि देव के चरणों में झुकते हैं, तो तीनों लोगों के जो श्रेष्ठ दिखाई देने वाले महापुरुष हैं, वे उनके चरणों में झुकते हैं, इसलिए तीन लोग के नाम है। हर व्यक्ति कौन व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, महिमा वाले सारी व्यक्ति कौन है, कहने वाला व्यक्ति कौन है, इस पर डिपेंड करती है ना बात। तो बिल्कुल अपने हृदय में ये श्रद्धा बराबर बैठनी चाहिए कि भगवान हमारा भला बुरा करने वाले नहीं है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना ले, कुछ भी नहीं देते भक्तों को, कुछ भी नहीं देते भक्तों को। और उसको भक्त भी वास्तव में पता है क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है, मैं बहुत एक साधारण से एग्जाम्पल से बात करता हूँ, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 12-15 साल के हैं, कभी दादाजी पापा भी पूछते भी उनसे ही, कभी जयजीना चंडी करते विद्यालय भी उसे, और कभी किसी दिन आया और कभी वो छोटा बहुत बच्चा जो है वो कभी दादाजी के पैर दबाता है और दादाजी कहते हो आप क्या है, तो दादाजी समझ जाते हैं तेरे को क्या चाहिए तो आपका बोलना तेरा प्रयोजन मुझसे नहीं है, तू मुझे नहीं जाता है, तू मेरा भक्त नहीं है। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन बिगाई, ऐसे पंक्तियां लिखी, ऐसे ऐसे भजन है वहां हमारे विद्यार्थी शास्त्री विद्यार्थी ना पढ़े, रचते भी हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, धूमधाम से आयोजन कराते हैं, बहुत सुंदर। क्या कहा है वहां, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, ऐसा कहा है कि है तो भिखारी और भक्त बनकर क्या है, सामने भक्त का भेद बनाकर क्या है, भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। तू भगवान का भगत नहीं है, तू भोगों का भगत है, भगवान का भक्त नहीं है, विषयों का भगत है, तुझे भगवान से मतलब नहीं है, तुझे तो सामग्री से मतलब है, तुझे तो अपना संकट दिखता है, भगवान की भी रास्ता नहीं दिखती। मैं कहता हूँ विचार ही भगवान के दर्शन विचारता से करो, विचार भाव से करो, जो भगवान के दर्शन विचार भाव से करते हैं ये भगवान बनने के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, उसका नाम सम्यक दर्शन। कुछ नहीं करेंगे भगवान, कभी लोग सामने से ऐसा प्रश्न करने लगते हैं, जब वो समाज में ऐसी बात करते हैं तो पंडित जी ऐसी बात करोगे तो मंदिर में कोई नहीं आएगा, कम से कम ये समझ करके तो आते हैं कि भगवान कुछ करेंगे हमारा, आप ये करोगे नहीं करते तो कौन आएगा भगवान के पास में, ऐसा लगता है ना अपने को, फिर क्यों जाना भगवान के पास में। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये मावे स्वामी इस भूल में बदले ना, तुम भगवान भगवान में सामान्य आदमी हो, भूल गए वो दिन जब तेरे वो दोनों बाद में थे, भगवान महावीर स्वामी को देख करके बात अंदर में ख्याल में आती है कि तुम जैसा बनूंगा कोई बात नहीं, तुम थोड़ा पहले की पढ़ाई पकड़ के चलेंगे, मैं थोड़ा बात की पकड़ के आऊंगा, आगे नीचे है बाकी कोई फर्क नहीं है, अर्पित ऊपर जाने में अपने कोई फर्क नहीं है, तुम पहले चले जाओ कि हम बाद में चले जाए, जाना बढ़ना ही तुम्हें वही है, आगे नीचे में क्या फर्क पड़ता है, ये बात मान के चक्कर में भी चक्कर नहीं है। और रामचंद्र जी के ऊपर उत्तर करने के लिए अभी सीता का जी पता है आपको, सीता का बर्बाद हो गया था, असली बर्बाद हुआ ना, अपन लोगों जैसा नहीं, हम लोगों में तो कोई भी मरे तो कहते हैं बर्बाद हो, नरक में जाएंगे तिरंग में जाएंगे जीवन में इतना भी पाप किया हो, मर के दर्द में गए हो, जाए नारायण पसंद है उनका बर्बाद हो गया। देवदत्त की चीजों का क्या होता होगा जी, मतलब क्या बोलते होंगे कि ये जो है ना इंद्राणी का मनुष्य वास हो गया, ऐसा बोलते हो क्योंकि देव देव मर के देव तो बनते नहीं है। सीता का जी जब यहाँ से मरा तो असली स्वर्ग वास का मर करके थोड़े दिन में प्रति इंद्र हो गई। रामचंद्र जी ने भी कहते हैं दीक्षा लेनी थी, रामचंद्र जी की दीक्षा लेने के पश्चात सीता के जीव ने जो इंद्र बन गया था वो रामचंद्र जी के ऊपर उत्सर्ग करने के लिए आया, राम मुनि के ऊपर यदि किसी ने उत्सर्ग किया तो सीते इंद्र ने किया सोलह स्वर्ग का प्रति इंद्र। अब कारण क्या बताया प्रभावी रूप के ग्रंथों में, कारण बताया कि अरे तुम तो मेरे स्वामी हो, अपन लोग साथ साथ मुख जाएंगे, तुम अभी से क्यों इतना करते हो, रजने की बात है मोक्ष जाने की बात है, इस तरह का कोई निकल पाता होगा, कौन किसकी पत्नी कौन किसका पुत्र कौन किसका भाई कितना किसके बाद में क्या संबंध है, अनंत जन्मों में हमारों किसके बाद में किस प्रकार के संबंध हमारे नहीं रहे हैं, सबके बाद में संबंध है, प्रकृति की इस प्रकार की व्यवस्था है, ऐसा नियम है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है बोलता है तो इसका मतलब यह है उसका उसके पास में पूर्व जन्मों में कोई ना कोई पिता पुत्र माता पुत्र माता पुत्री कोई ना कोई ऐसा ब्लड रिलेशन रहा है, इसे बात नहीं करते हम लोग, किससे बोलते हैं जिससे भी बात की है आपने समझिए आप किसी से इंक्वायरी के लिए बात कर रहे हैं, किसी मॉल में किसी सेल्समैन से बात कर रहे हैं, किसी जो कुछ भी आपने पूछा आपस में बात की उसके पास में आपका कोई ना कोई फैमिली क्लोज रिलेशन रहा है पिछले जन्म में। अब आप समझ लो हजारों लाखों लोगों से बोले होंगे आज आज तक जन्म सबके पास में क्योंकि आनंद से जन्म ले चुका ना आपको यही बात जैसे नहीं रही है। इस संदर्भ में प्रथमान युग का प्रसिद्ध उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, और जो 923 पुत्र थे जन्म से बोले नहीं बताया आपको बोली थी जन्म से आग मच के हो गई और भरत जी उसको लेकर के समोशरण में पहुंचे भगवान आदिनाथ स्वामी के समोशरण में, और उन्होंने कहा कि प्रभु मैं चक्रवर्ती चक्रवर्ती के बच्चे ऐसे इतना पुण्यहीन मेरा ऐसा कैसे हो सकता है, जन्म से बोले ही नहीं आता है, बोलना ही नहीं आता है तो घूंगे नहीं है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि आया कि नहीं नहीं बोलते हैं ये घूंगे नहीं है बोल सकते हैं, आज इस तरह की बात आई तो उनके बारे में बोलने के संदर्भ में तो वहां पर सिर्फ एक वाक्य बोले हुए पिताजी हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान की ओ और दीक्षा लेकर के मोक्ष ले 923 पुत्रों की बात है भरत चक्रवर्ती के पूरे 923 के 923 पुत्र नित्य निबोध में निकल करके आए थे, उन्होंने दूसरी बढ़िया ही धारण नहीं की जिनके बाप में किसी तरह का कोई दुनिया में कोई रिलेशन बोले तो किससे बोले किसी से परिचय नहीं दिखाई देता है पुराना किसी से बोलने से नहीं दिखाई देता किससे बात करें आपको समझ में आई रमेश भाई आपस में अपने बात की इसमें कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा रमेश भाई कुछ ना कुछ ऐसा संभव ही नहीं है, मैं तो केंद्र की बात कर रहा हूँ रोड पर चलते चलते आपने किसी से टाइम पूछा हो गया टाइम क्या हो गया इसमें उसके पास में कोई ना कोई रिलेशन रहा है कुछ उससे बातें नहीं हुई होगी कितने जन्म हो गए कितना काल व्यतीत हो गया इसलिए रिलेशन के चक्कर में क्योंकि ये तो टाइम बात है वो देशों देश के अंदर कई तरह के श्लोक आते हैं बहुत सुंदर सुंदर श्लोक भी है पक्षी है रात्रि का विश्राम करने के लिए पेड़ पर आकर रुके कोई 10 मिनट पहले आकर के पेड़ पे बैठता है, कोई 15 मिनट बाद में आता है, कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे आता है, और सुबह उड़ने में भी कोई पहले उड़ जाता है, कोई बाद में उड़ जाता है, काम भी बर्बाद रहते हैं। और हम लोगों का भी सबका पारिवारिक संबंध संपर्क इसी प्रकार का है, कोई थोड़ी देर पहले आ गया है, किसी का कुछ देर बाद में जन्म हुआ है, 10-20-25 साल जो भी साथ में रहे, और फिर उसके बाद में किसी को पहले उड़ जाना है, किसी को बाद में उड़ जाना है, और ना होगा कोई आगे और कोई पीछे, इसलिए उनके चक्कर में एक श्रद्धा से इसलिए होने में कोई बात नहीं। भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा, भगवान में दृढ़ श्रद्धा का मतलब भगवान करता धरता नहीं है, इस बात पर श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा का मतलब भगवान जीतरा ही है, इस बात में श्रद्धा, और इसी श्रद्धा को कि वैसा ही जीतरा की स्वरूप मेरा भी है, ऐसा हम अपने आत्मा की श्रद्धा पर व्यक्ति भिन्न आप में रही समय को भला है तो ये समय दर्शन का ही देखो आप ज्ञान के संदर्भ में कह दिया भाई सेम नहीं प्रश्न के बाद आप रूप को ज्ञान बनो तो सबने ज्ञान मिला, अपने आप का ज्ञान बना हुआ उसे सबने ज्ञान कहते, और आप रूप में लीन रहे फिर वो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर हो जाने को ही सबने ज्ञान कहते। अब देखिए आगे अब व्यवहार मुख्य मत सुनिए, हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग तो ये है, हेतु नियत को हुई वो निश्चय का हेतु है। तीसरा जन जीव अजीव तत्व द्रव बंधन संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन जिन को जो का जो कर जानो। जीव अजीव तत्व अनुवास्त्रव बंधर संवर जानो निर्जर मोक्ष कही जिन जिन को जो का जो कर जानो। कहीं जिन सात तत्वों के नाम बता दिए, जीव अजीव बंदर आश्रव बंद और संवर निर्जर और मोक्ष, ये सात तत्व है और पुण्य और पाप को जोड़ करके 9,000 हो जाते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आश्रव बंद में गर्भित कर लो तो 7 तत्व कह देते हैं, अलग से बता दो तो 9 तत्व हो जाते हैं, 9 पदार्थ कह देते हैं उनको, कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। ये जो 7 तत्व है इन 7 तत्वों के प्रधान के संदर्भ में कहे हैं, कहे जिन जिन को कहे जिन जिन मतलब जिनेंद्र देव, जैसा भगवान ने कहा है तिनको जो का जो श्रद्धा हो उसमें भेदभाव मत करना, जीव का जैसा स्वरूप बतलाया है, अजीव का जैसा स्वरूप बतलाया है, ठीक है, अजीव का क्या स्वरूप है, आश्रम और बंध का क्या स्वरूप है, कहने का पहले हम लोग क्या करते हैं, आश्रम को बंध में बंध को संबंध में इसको उसमें उसको सुधरा दे, गड़बड़ हो जाती है, अकाउंटिंग गड़बड़ रहेगा, तो मेरी किसी व्यक्ति जिससे लेना था उसको लेनदारी निकाल दी, क्रेडिटर्स को डेबिटर्स में डाल दिया, डेबिटर्स को क्रेडिटर्स में डाल दिया, डीआर को डीआर कर दिया, सीआर को डीआर कर दिया, इधर उधर फिर अकाउंट बिगाड़ दिए तुमने, तो फिर क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करता है गड़बड़ पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, फिर इस तरह का उल्टा सीधा काम करेगा, फिर यहाँ पर जिसने उल्टा सीधा किया ना, जीव को अजीव में मिला दिया, अजीव को जीव में मिला दिया, शरीर और आत्मा को एक मानता है, दोनों को एक में समझता है, आश्रम को संभर जाना बंध से ही मुक्ति माना, क्या कर रहा है, आश्रम को संभर समझता है, कौन से आश्रम को, उनने आश्रम को संभर समझ लिया, अनुव्रतों के पालन को महाव्रतों के पालन को संभर समझ लिया, सत्वानंद महाशास्त्र छठवां अध्याय जाकर के देखिए आप, सत्पाध्याय की चर्चा की आपको पता है ना, सत्पूत्र 7 अध्यायों के लिए समझ लेते हैं, 7 तत्वों के लिए सत्पूत्र के 10 अध्याय जानते हैं आपको सतमा सूत्र महाशास्त्र कुमार स्वामी आचार्य द्वारा जो लिखा गया है तो उसमें सिर्फ सात तत्वों का वर्णन है। सतमा सूत्र महाशास्त्र का पहला दूसरा तीसरा चौथा चार अध्याय जीव तत्व के लिए जीव तत्व का वर्णन, पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन, छठवां और सातवां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन, आठवां अध्याय बंध तत्व का वर्णन और नौवां अध्याय संबर और निर्जरा का वर्णन और दसवां अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन। आप खोल करके देखिए उसके अंदर बिल्कुल आपको यही निवेदन मिलेगा। पूरे दसवां अध्याय का ये विभाजन है तो छठवां और सातवां जो अध्याय है वो आश्रव तत्व के वर्णन के लिए, ठीक है, छठवां और सातवां अध्याय आश्रव तत्व के वर्णन के लिए है और उमा स्वामी आचार्य देव ने उसमें चर्चा की है शुभ है पुण्यं से अशुभ है वापस से पुण्य और पाप दोनों प्रकार के आश्रव की देश करो दोनों में की इस तरह के पुत्र दिए हैं अनुव्रत और महाव्रत इन सबकी चर्चा उन्होंने आश्रव अधिकार में की। माने अनुव्रत पालन करने का शुभ भाव भी महाव्रत पालन करने का शुभ भाव भी आश्रम तत्व है और ये उनको संबंध तत्व समझ लेता है तो कहते हैं तूने अकाउंट को गड़बड़ किया इसकी खतौनी करना तेरे को सही नहीं आया अकाउंटिंग सही नहीं आया लेजर तूने मेंटेन नहीं किया बराबर तो क्या होगा सब गड़बड़ ये संसार परिभ्रमण का कारण बन जाता है चार बच्ची की जेल हो जाती है इसको सभी सोचा आपने चार बच्ची की हम जेल शब्द का प्रयोग करते हैं जेल क्यों कहिए इसको अब कभी ऐसा लगता है एक जेल से निकलता है दूसरी जेल में चले जाता है ये कैसे करे मन की गति की जेल से निकला और तेज गति की जेल में चला गया तेज गति की जेल से निकला नर गति की जेल में चला गया और नर गति की जेल से निकला अब मनुष्य तेज गति की जेल में देव गति की जेल में चला गया जेल से निकल कर जेल में क्यों जाता है जेल से कभी छूटता नहीं है या मुक्त नहीं होता है क्या देखिए जो लोग अपराध करते हैं वो लोग जेल में जाते हैं एक बात तो रखिए जेल में जाना अपराध का फल है जिस अपराध के फल में कोई व्यक्ति जेल में गया हो यदि जेल में जाने के बाद भी यदि वो सुधर जाएगा तो सजा कम हो जाती है और जेल से छूट जाता है और जेल में जाने के बाद यदि कोई अपराध करता रहेगा तो कब छूटेगा और बड़ी जेल में डाल दिया जाए ऐसे हमारे पास में हो रहा है कभी तेज गति की जेल में गया और अपराध किए नरगति की जेल में चला गया और वहां पर परिणाम होने से मन हुए तो निकल करके मनुष्य गति की जेल में आ गई शायद सुधर जाएगा थोड़ा सा अच्छा हो गया है बहुत प्रयास सुंदर था इस नर में बहुत पश्चाताप करता था हे भगवान ऐसे क्या पाप किए सोचता रहता था इस तरह से भगवान के पास आकर के कहता था हमने ऐसे क्या पाप किए ये पाप करने का फल मिलता है तो रोता है और ये करता है तो हमने उसे करता है यदि तू करते समय ही फल के बारे में विचार कर ले रहे तो पाप ही क्यों करे मनुष्य गति में आ रही है सोचे कि चाहे पवन जाएगा चाहे सुधर जाएगा चाहे देव विज्ञानी हो जाएगा आत्मान वही हो जाएगा अपने में समा जाएगा देश पर का भेद विज्ञान कर लेगा सजाए उसे मुक्त हो जाएगा अनुमान मंदिर विद्यार्थ से रहित हो जाएगा लेकिन मनुष्य बजाय में आकर के फिर दोबारा ऐसे में कोई काम किए तो कम मुक्त हो जाएगा और बड़ी जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कई बार और कोई मनुष्य लोग की दुर्लभता में इतने प्रकरण कहे जा सकते हैं कि ये बहुत दुर्लभता से लिए एकदम इंद्रिया छोटी छोटी सी बातें इंद्रिया जो अपने को मिली है ये दुरुपयोग करने के लिए नहीं है चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग ये ऐसी जबरदस्त रिद्धियां प्राप्त हो गई है जिन रिद्धियों की बराबरी दुनिया में कोई रिद्धियां नहीं कर सकती है चक्षु इंद्रिय रिद्धि चमत्कार है आप इनको देखते हैं और कहते हैं महेंद्र भाई है इनको देखते कहते हैं रजनी भाई है इनको देखते कहते हैं रमेश भाई आप कैसे पहचान रहे हैं आप बोलो कैसे पहचान पा रहे हैं? सेट होगा आप लोग फोटो देख करके कि ज्ञान का क्या बता रहे हैं, ज्ञान की कहां से है ये, कि क्यों क्या है वर्तमान में हमारे कुछ एक्सपीरियंस समझने के लिए आए। लेकिन ध्यान रखना किसी तरह से कर्णन जी आवाज सुन रहे हैं, ज्ञान देते हैं कौन बोल रहा है, ये कर्णन जी की सामर्थ्य नहीं है, ये कोई समझ दिए बोलने की सामर्थ्य मिल रही है, देखने की सामर्थ्य मिल रही है, चलने फिरने की सामर्थ्य मिल रही है, एक पांचवी इंद्रिया जो हमारे को मिल रही है, और आपने इनका दुरुपयोग किया तो क्या होगा? इतिहास इस बात का गवाह है कि ऋषि प्राप्त व्यक्तियों को जब जब उन्होंने ऋषियों का दुरुपयोग किया है ऋषियां उनसे छीन ली गई। हमने यदि अपने चक्र इंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने यदि अपने कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग किया, हमने यदि अपने रत्न इंद्रिय का दुरुपयोग किया, तो आप मान करके चलिए रेस्पेक्टिव मिलेगी ना कर्ण मिलेगा ना रत्न मिलेगी, कितनी बन जाए। हमने यदि इनका दुरुपयोग किया तो चक्र इंद्रिय की बात अपना जन्म देने में दर्शन कर रहे हैं, कर्ण इंद्रिय की सामर्थ्य कर्ण इंद्रिय की सार्थकता जिन वचन सुन दे रहे हैं, रत्ना इंद्री की जो सार्थकता है वो जिससे प्रिय वचन बोल देने हैं, प्रभु का गुणानुवाद कर देने हैं, खत्म चर्चा कर लेने हैं, और हमने यदि इसका दुरुपयोग किया तो क्या होगा? छीन लेंगे नहीं मिलेंगे आपको। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मिल गया है तो परमानेंट रहेगा कि नहीं? टेम्परेरी मिला है उस समय के लिए, कितने समय तक रहेगा आप सोच लीजिए, चले जाएगा तो फिर क्या होगा? खड़े रहेगा पेड़ बंद करके वनस्पति का होकर के आने जाने वाले हाथ पाँव तोड़ेंगे, हाथ पाँव तोड़ेंगे मतलब पत्तियां टेनिया फूल, हाथ पाँव बराबर है उसके, हमारी कोई उंगली तोड़ दे तो हमारे को कैसा लगता है, ऐसी दशा है। तो हम कह रहे हैं इनका दुरुपयोग करें, श्रद्धा करें, अपने आरोपों पर श्रद्धा करें, अपने ज्ञान पे भरोसा करें, अपने आप की महिमा जाने, अपने की रुचि अपने आप की महिमा जानने पर होगी। जिस चीज की दुनिया में महिमा जानते हैं तो हमारे को उसके प्रति इंटरेस्ट कर सकता है। कि जितने सेल्समैन होते हैं कोई चीज आपके पास में देने के लिए आएंगे तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं देखना, एक बार सुन तो लो भाई साहब, क्या कहते हैं, एक बार देख तो लो, आप मत करना समझ लो, मत देना देख लो, क्योंकि वे जानते हैं कि हम दिखाएंगे और यदि ये इसको अच्छी तरह गहराई से देखेंगे तो फिर इसके गुणों से प्रभावित होकर के ले लेंगे। तो जब हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं, जब किसी चीज को देखते हैं, तब उसकी रुचि जागृत होती है। यहाँ आत्मा की रुचि के संदर्भ में समय दर्शन कहा है, आत्मा की रुचि क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आत्मा के बारे में जाना भी नहीं है, कैसे रुचि होगी, हमें पता ही नहीं है आत्मा क्या होता है। बहुत सारे सुनने का हो सकता है जिन्होंने आत्मा शब्द ही मंदिर में आकर के पहली बार सुना हो, जानते ही नहीं हम आत्मा, फिर तब तक तो लोग तो आत्मा को भूत भेद समझते हैं, लोग ऐसा लगते हैं डरावनी बात, आत्मा को भटकती आत्मा ही जीता है, कहते हम लोग तो भटकती आत्मा ही है क्योंकि संसार में भटकती रहे हैं। अब बाकी वैसे जिस प्रकार की भटकती आत्माओं की बात आप समझते हैं वैसे कोई आत्मा भटकती नहीं है, क्योंकि ये एक देह छोड़ देने के बाद में दूसरी देह को प्राप्त कर लेता है, उसमें एक दो तीन समय लगता है, उमा स्वामी आचार्य सत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में कहते हैं एकम बहुत ही महामार्ग है, ऐसा सूत्र है सत्वार सूत्र का दूसरे अध्याय, एक दो और तीन समय तक ये जीव अनाम कर देता है, फिर शरीर की प्राप्ति हो जाती है, शरीर खत्म कर लेता है, जहाँ जन्म लेना होता है वहां पहुंच जाता है, इससे ज्यादा भटकता नहीं है शरीर भी, इतना भी भटकना नहीं है, ये तीन समय में भी यहाँ जीवन पूरा करने के बाद जहाँ पहुँचना है उस जगह तक रास्ते का टाइम है, जयगति का इतना का टाइम है, अगर कोई नहीं भटकता है तो सारी जो आत्माएं भटकती है कोई भटकती भटकती नहीं है, देव होते हैं देवगति के जीव होते हैं, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं और उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस डरावने रूप में आपके सामने आ जाए कदाचित वो डरावना रूप उनका असली रूप नहीं है, ऐसा भी रूप बना लेते हैं, आप डरेंगे तो आपको ज्यादा डर है, क्यों बच्चा जिस चीज से डरता है उसको ज्यादा डराया जाता है, जैसे छोटा सा बच्चा हो ना 3 साल का बच्चा और उसको हमारे घर में कोई ऐसा खिलौना हो जिसको देखते हुए डरता हो, तो मतलब कुछ बिल्ली हो कोई ऐसा कुत्ता हो ऐसे खिलौने में कुछ करेगा, बच्चा देखते डरता है उससे रोता है मान लीजिए, तो उसको डराते हैं ना ये खा जाएगा, तो बच्चा उससे डरता है, कब तक डराते हैं उसको, जब तक उसका वो डर निकल नहीं गया हो, तब तक डरा करके अपन अपना काम निकालते हैं उसने, और जब उसने उससे डरना बंद कर दिया तो अब हमने समझ लिया जाए कि डरेगा नहीं, और ये होशियार हो गया। तो ऐसे जंतर और जाति के देव वगैरह आठ प्रकार के जंतर होते हैं। सत्वार सूत्र चौथे अध्याय का सूत्र, जंतरा किन्नर किम्पुर मोहर गंधर्व यक्ष आपसे खुद भी चल जाओ। आठ प्रकार के जंतर है, किन्नर किम्पुरुष मोहर गंधर्व, चार प्रकार अलग, और फिर यक्ष के राक्षस भूत पिशाच, ये चार प्रकार अलग, दो विभाजन है उसमें। पिशाच वाले चार में भक्ति की प्रधानता होती है, भक्त होते हैं, और बाद वाले जो चार हैं उनमें कौतूहल की प्रधानता होती है। दुनिया में जितने मंदिरों में चमत्कार आदि दिखाई देते हैं, दार्शनिक स्थलों पर जो चमत्कार आदि दिखाई देते हैं, कई भगवान के माथे पर रखा हुआ छत्र घूमने लग गया है, कभी कुछ चमत्कार हो गया, कभी कुछ चमत्कार हो गया, इन मंदिरों में चमत्कार देखते हैं, ये सब उन केन्द्र के पुरुष मोहर गंधर्व चार प्रकार के देवों का कार्य है। मंदिरों में घंटे बजने लग जाना, रात्रि में इस प्रकार के चमत्कार दिखाई देना, जैसा कुछ आप कहते थे वहां क्या बजे इस तरह की आती थी, पास में जाओ तो मंदिर कोई नहीं अंदर मंदिर में, तो वो सब उन देवों का कार्य है। और जो कौतूहल की प्रधानता वाले देव होते हैं अलग प्रकार के होते हैं, किसी के साथ में बड़ा बुरा आदि परिस्थितियां जो बनती है, देखो एक बात ध्यान रखना, कोई जनता किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये बात को सबसे पहले अपने मन में रखना। अपना भला और बुरा जो हो रहा है वो अपने पाप कर्म के वजह से हो रहा है। अमित के आचार्य कहते हैं अपने सामयिक पाठ में, स्वयं कृतम कर्म यदा बुरा फलम यदि रक्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरंतरम बता। हमने कोई कर्म किया शुभ और अशुभ उसका फल हमारे को मिलेगा, और यदि हमारे किए हुए कर्म के अतिरिक्त कोई दूसरे के द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ हानि सुख दुख दे दिया जाए तो हमारे द्वारा किया गया कर्म निरंतर हो जाएगा। फिर क्या बता देगा, कितना जबरदस्त कर्म दिया उन्होंने, आपके किए हुए का क्या होगा, उसका फल कैसे मिलेगा। हिंदी बद्यानुवाद जी का भावना मंत्री जी ने बहुत सुंदर जीवन जी का बद्यानुवाद जी है, क्या लिखते हैं उसमें, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय देते करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निश्वल होते। भगवान जी किसी भी कैसे कर सकता हूँ, एक बात बता, मैं भगवान के पास में पहुंचा, ये भगवान के पास हो गया, आप ही बचा सकते हो प्रभु, आप बचा दो मेरे को, आप संकट से निपटा दो मेरे को, बता कह रहा हूँ एक बार संकट से बचाओ, मुझसे कुछ नहीं, ये पाप हो गया है ये पाप धो दो मिटा दो इस पाप को। भगवान जी कहते हैं एक बात बता, ठीक है मान लिया कि मैं तेरे पाप को मिटा दू, तूने बहुत सारे पुण्य भी किए पहले, उनको भी मिटा करके पाप में बदल दू, फिर नहीं ऐसे करते हो। जब तू अपने पुण्य को नहीं बदलना चाहता, अपने किए हुए पुण्य को, तो फिर पाप को बदलने की अपेक्षा नहीं करके मेरे पास में गिर जा गया, समझ में आ रही है बस, कितनी सिंपल सी बात है। आप अपने अच्छे कार्य भावों के माध्यम से जो कर्म बना है आप उसको नहीं बदलना चाह रहे हो, तो आप अपने लड़ाई के लिए पाप कर्म को बदलने की अपेक्षा कैसे रख सकते हो, नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई दया का विधान नहीं है, हमारे यहाँ कोई शरण का विधान नहीं है, हमारी शरण में आने वालों को हम भला तो नहीं करते लेकिन भलाई का मार्ग जरूर बता देंगे। कौन है सच्चा भला करने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपना घर भूल गया हो, ये अपने दृष्टि जो है ना इसको अपने घर की पहचान होती है, हम लोगों को अपने घर की पहचान है, हमें पता नहीं है अपने घर के बारे में, हमारा वास्तविक घर बनता है, हमारा बिजनेस बनता है, और हट रहे दुनिया में कोई देश का पुत्र हो और रोड पर एक्सीडेंट हो जाए या दस चली जाए, आप उसको पहचानते हो, क्यों ये तो बेटी का बेटा है, उधर बेटी परेशान हो रहे थे, इधर ये भटक रहा है, उधर भीख मांग रहा है, $2 मांगता है आपसे रोटी खाने के लिए, $2 दे दो, क्या सभी रोटी होंगे कह रहे थे, दिखाई रोटी नहीं है तो यहाँ दिखाई देते, दो तरह के भिखारी होते हैं, भिखारी दो तरह के होते हैं, चिंतन जब कहता दो तरह के भिखारी बोलते हैं, एक वो भिखारी है जो स्टैंडर्ड की भिखारी है, एक वो है जिसका स्टैंडर्ड थोड़ा खराब है। जिनका स्टैंडर्ड खराब होता है ये भिखारी मंदिर की बाहर बैठकर भी मांगते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है ये गाड़ी में आकर के मंदिर में भगवान के सामने भी मांगते हैं। वो बाहर मांग रहे हैं, उनको बेचारा अंदर आ नहीं सकता क्योंकि अंदर बैठे वाले वो आने नहीं देते। लेकिन ये भी तो मांगने आया है भीख मांगने के लिए। नहीं यार, ये भिखारियों का काम नहीं है, श्रद्धा बदलने की बात करते हैं। तू है अपने में स्वयं पूर्ण, अपने आप क्यों नहीं देखता है? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अनंत ज्ञान की गुणों का अखंड पिंड होगा, अनुमान अंदर देव देवन निर्धारमान है, ज्ञाय है, ज्ञान भर है, ज्ञान दर्शन सुख वीर चार प्राणी अनंत की शक्तियां देने में मौजूद है। एक बार आत्मा के स्वरूप को शास्त्रों के आधार से पढ़े तो ये आत्मा की रुचि के लिए न हो गए। हम क्या ये पढ़ा नहीं है, इसमें जानता नहीं है, इसलिए इसको रुचि नहीं। एक बार जाने, एक बार देखे इसके स्वरूप के बारे में, कैसा आत्मा का स्वरूप है, अमूर्ति है, अविनाशी है, नाशवान नहीं है। नैनम जन्मती सत्ता गीता में जैसा कहते छात्र खेल नहीं सकता, भेद नहीं सकता। बहुत से गीता के संदर्भ में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि समय काल और गीता की बातें बराबर एक जैसी गलती है, लेकिन भैया बहुत फर्क है। ऊपर ऊपर से देखने पर थोड़ा आपको समानता जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंतर है। तुम मैंने वो ये कहते हैं आकर्षण की बात तो दोनों करते। श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा पता है आपको? क्या है गीता के श्री का नाम? मैंने पढ़ी है पूरी गीता, कोर्स में थी मेरे, हम दर्शन पढ़े हैं। मैंने वो ये कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन देते हैं पूरी गीता में 18 दिन के महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है गीता। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन तक, कौरव पांडवों के बीच में वो जो परस्पर में युद्ध चलता था, अब सामने तो सब परिमाण वाले दिखते थे, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही थे, पता है ना आपको? वो भी एक अलग घटना है। एक तरफ पूरी प्रजा थी, वो पूरी सेना थी, और एक तरफ अकेले श्री कृष्ण थे, और दोनों में से चॉइस थी क्या करना है। दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली और श्री कृष्ण ने कह दिया अरे जब मैं भी रहूंगा ना, मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, कहते हो मेरा काम नहीं होगा, फिर मैं बाहर ही बनूंगा। वो समझदार था, जरा उसको लगा कि ये युद्ध से पहले भी मांग ले, मैं पहले मैं आया था, पहले मैं मांगूंगा, दोनों में से क्या लेना है। ठीक है तुम मांग सकता है, मांगना है मांग लो, तो पूरी सेना आपकी सारी सेना सारे हथियारों के साथ मिली। आज तो फिर क्या था श्री कृष्ण साथ में हो गए, पांडवों के साथ में हो गए। लेकिन देखो आप ये जीत किसकी हुई बताया? एक तरफ सारी सेना है, उसके बावजूद भी जितने वो श्री कृष्ण है उसकी विजय हुई। हम ऐसा ही कहते हैं कि ये जो आप करते हैं ना, आपने रुचि ये जो बात कही गई है कैसी है, एक तरफ सारी दुनिया है और एक तरफ अकेला आत्मा है। एक तरफ सारी दुनिया है, वो सारी दुनिया के अंदर आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, अच्छे अच्छे देखने के साधन मिलेंगे, पांडव जीवों की भोग मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी, वैभव मिलेगा, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, तारीफ करने वाले मिलेंगे, स्टेज पे बिठाएंगे, मालाएं पहनाएंगे, तारीफ करेंगे, खूब पैसा होगा, खूब वैभव होगा, खूब चमत्कार होंगे, अनुमान क्या क्या गाड़ियां लौकर जाकर आपके इशारे पर चलने वाले, कैसा आप कहीं वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ एक तरफ है और दूसरी तरफ हर द्रव्य से भिन्न आप मेरे की, एक तरफ ये है हम आपकी रुचि की तरह दो सबको अपनाने वाले उलट करके रह जाते हैं, फंस करके रह जाते हैं, हार उन्हीं की होती है, और जो एक को अपनाते हैं अपने में समा करके उनकी हिसाब की तरह। ठीक है, बात तो आगे की कर रहा था। 18 दिन का उपदेश है अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते थे, सब लोगों के सामने खड़ा हुआ देखते थे, और जो जाके जी है और ये जो मेरे भाई है मैं सबके साथ साथ खेलते रहे हैं और ये जो गुरु है मेरे दोनों जाने मैं इनके ऊपर कैसे जीत जवा सकता हूँ। तो श्री कृष्ण उसको उपदेश देते थे और वो जो उपदेश है ना वो उपदेश है गीता। और पूरे उपदेश में इस तरह की तू मानने वाला नहीं है, तू मान नहीं सकता है, वो सबको तुम्हारा मान नहीं है, वो सबको मैं नहीं है, जो उपदेश दिए वो मानता ही नहीं है। बस मतलब पूरा का पूरा उद्देश्य किसकी है कि अरे अर्जुन कैसी बात कर रहा है, तेरे तेरे मारने से मरते हैं कोई, अपने मारने से कोई मरता है, आपका जन्म मरण सब विधान मेरा क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, प्रकृति के लिए मानना नहीं बुराई करवानी भविष्य है, अहंकार में मुलाकात करता हूँ मन से गीता का श्लोक है। क्या कहते हैं उसमें प्रकृति का क्या हुआ है, प्रकृति का नहीं है, प्रकृति प्रिय मानवी गुणय करवाणी सर्वज है, सब कोई प्रकृति का रही है, प्रकृति मतलब सर्व प्रकृति की उनकी प्रकृति पुरुषांग के बताओ लगनी होती है नहीं तो सांग के रचने वालों की बच्चे तत्व मानते हैं प्रकृति और पुरुष। आप लोग ऐसा नहीं बहुत कौन से धर्म दर्शन की बातें करते हैं, प्रकृति और पुरुष बच्चे तत्व मानते हैं, पुरुष को अलग मानते हैं और प्रकृति से भारी रचना मानते हैं, प्रकृति और पुरुष के मेल को बंधार कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अलग अलग हो जाने को मुक्ति कहते हैं, सांस्कृतिक संप्रदाय है छठ दर्शनों में। गीता में उस बात का पोषण किया है, तत्व रजत तमस की बहुत चर्चा की है इस तरह की, आपने कभी सुनी होगी आप पड़ोस में उनके संदर्भ में, तो इस तरह का उपदेश उसने दिया है। क्या कहा है, नैनम चिन्हि क्षत्राणी नैनम देहति पापच, नैनम के रंत्या को नै शोषयति मादच, शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, अग्नि से जला नहीं सकती, जल जिसे बुझा नहीं सकता, हवा जिसे उड़ा नहीं सकती, ऐसा आत्मा है, ऐसा बोलता है आत्मा के स्वरूप के बंधन में, ऐसा ही ना आत्मा का स्वरूप अपने यहाँ इसी प्रकार का है, तो आप कितनी मिलती है बात कि नहीं भैया बहुत फर्क है उसमें और इस बात में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ जो आत्मा का स्वरूप बताया है वो पॉजिटिव वे में बताया है, नेगेटिव नहीं। आत्मा चक्र से कट नहीं सकती लेकिन है कैसी, तो बताओ कि अग्नि जला नहीं सकती लेकिन है कैसी, बस पानी उसे गला नहीं सकता लेकिन है कैसा, ये का ज्ञान स्वरूप है, उपयोग लक्षण एक सूत्र का ये आत्मा की जो चर्चा है ये भी नहीं होती है, ये विशेष बात है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, चेतना लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण वाला है, जाने देखने वाला होता है आत्मा, अनंत गुण वाला होता है आत्मा, अपने को वस्तु वाली गुण धर्म मौजूद है आत्मा में, जीवन में व्यक्ति है जिसकी व्यक्ति है ऐसी शक्तियां आत्मा में, ये होने की बात चाहिए। नहीं समझ में आई होगी आप लोगों को बात, छोटी सिंपल का उदाहरण, दो दो कितने होते भैया, एक व्यक्ति ने जवाब दिया है बालक ने, पांच तो नहीं होते, गलत कह रहा है नहीं कह रहा है, ये ना जवाब पांच तो नहीं होते, ये जवाब सही है ना, ये जवाब सही है। फिर हमने पूछा कि और दो लोग कितने होते हैं ये बताओ, चार नहीं होते, ये दो लोग कितने होते हैं, फिफ्टीन नहीं होते, ये दो लोग कितने होते हैं, सेवेंटी नहीं होते, ये दो लोग होते कितने हैं, ये वन भी नहीं होते, दो लोग कितने होते हैं भाई साहब ये बताओ ना, हंड्रेड नहीं होते, टू हंड्रेड नहीं, कब तक बतलाते जाएंगे ये नहीं होते ये नहीं होते, दो लोग कितने होते हैं, पहुंचे टू प्लस टू कितने होते हैं, टू प्लस टू कितने होते हैं, सब क्या चाहिए हमारे को, हमें ये मत बताओ कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, एक बात बता दो टू प्लस टू इक्वल टू फोर, बस खत्म। ऐसे समझ में आई बात, आत्मा कैसा होता है, अग्नि से नहीं चलता, ठीक है अग्नि से नहीं चलता होगा, कई चीजें ऐसी होती है अग्नि से नहीं चलती है, ठीक है जिनको अग्नि नहीं चला सकती है, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे साइंस जानने वाले लोग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अग्नि से नहीं चलती है, तो क्या वो आत्मा है क्या, किन्हीं पवन जिसको उड़ा के नहीं ले जा सकती है, फिर दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको पवन जी उड़ा करके ले जाती है, ठीक है, नहीं पानी जिसको गला नहीं कर सकते, बहुत चीजें होती है, बताओ आत्मा कैसा है ये बताओ हमारे को, आत्मा का लक्षण हमने बताया कि जानता देखता है वो आत्मा है, ये दुनिया के किसी बना में नहीं रहेगा आत्मा कहते, ऐसे हुआ हमें आचार्य जी के लक्षण बनाया है, उपयोग लक्षण है जानना देखना, उपयोग का अर्थ जानना देखना, बस उसे उपयोग कहते हैं। वो जीव का लक्षण है तो पहचानना है हमारे, कितने सफल की बात है। तो आत्मा का स्वरूप जानने पर आत्मा की रुचि जागृत होती है, ठीक है। और जब आत्मा की रुचि जागृत होती है, जिसकी रुचि होती है उधर की प्रवृत्ति होती है। बोलिए हमारी कितनी रुचि है, अभी हम रुचि की बात कर रहे थे, मैं तो मैं शायद आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे से मैं तो कभी बढ़ पाता हूँ आगे, मैं तो फिर वापस बैठ आ गया रुचि करा ले, लेकिन बढ़ूंगा आगे, ठीक है। तो बात मेरे को दिमाग में आती है तो मेरा मन होता है कि मैं कहूँ कुछ उसके बारे में, अपनी रुचि के बारे में। आपने कहा आप लोगों की बहुत रुचि है, किसकी किधर रुचि है, इस बात को सब महसूस कर सकते हैं हम जब प्रतिपक्ष हमारे सामने हो, जब चॉइस हमारे सामने हो। आपके पास में ऑफिस का काम है और आपके पास में ये स्वाध्याय का प्रवचन का समय है, आप दोनों में से दोनों किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो पता लगता है रुचि की तरह। आप फ्री से आ गए इसमें क्या हो गया, इसको नहीं मानता मैं रुचि। आज मेरा बहुत रुचि है साहब, कभी तो आए चार घंटा लगता है आने जाने में, बैठने में डेढ़ घंटे का प्रवचन, एक एक घंटा आने जाने में साढ़े तीन घंटे तो हो ही गए, और कोई दस पंद्रह मिनट आगे पीछे मानो तो चार घंटे लगते हैं पूरे। तो चार घंटे बर्बाद किए तो रुचि है ना हमारी, कि आप फ्री थे इसलिए आ गए। आपको यदि कोई दूसरा काम होता तो आप कितने महत्व ज्यादा देते, जिधर इसकी रुचि होती है उस काम को ये पहले करता है। टाइम की शॉर्टेज होती है तो सबसे पहले कटौती स्वाध्याय में होती है, मंदिर में होती है, जिन मंदिर के कामों में होती है, टाइम की शॉर्टेज होती है तो। पैसे की शॉर्टेज होती है तो सबसे पहले कटौती दान में होती है, जितना देने वाले दिन नहीं दिया खर्चे ज्यादा हो गए, ज्यादा खर्चे हो गए उसमें कटौती क्यों नहीं करता है, नहीं उसमें कटौती कोई नहीं होगी, वो तो सब अपने काम बराबर पूरे होंगे, उसमें तो खर्चा हमारा बराबर चलेगा, है ना, उसमें कोई कटौती नहीं करना चाहता है। न्यूज पेपर में कटौती नहीं होगी, घर के जो खर्चे हैं दुनिया भर के आराम के उनमें कोई कटौती नहीं होगी, उसमें नहीं पूछता है। $200-500 यदि कहीं खर्च कर रहे हो तो ऐसे खर्च कराता है दुकान पर जैसे कुछ नहीं, जैसे आजकल सब जमाना ही ऐसा ही हो गया है, आप क्या करें, ऐसे खर्च करता है बिल्कुल पानी की तरह बहा रहा है, और धर्म के लिए खर्च करने की बात हो तो $200-500 से सब पूछता है। अच्छा कितना लगेगा सोचता हूँ, क्यों कई बार हम कहते हैं आपको अपने आप ही कितनी रुचि है बताओ। अभी यदि बताइए आप डॉक्टर के पास में गए, थोड़ा सा दर्द होता था, महात्माओं ने कहीं कुछ भी आप दिखाने के लिए डॉक्टर ने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद उसने देख करके बताया कैंसर है, क्या बात कर रहे क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, टाइम नहीं आपके पास में ज्यादा, कब करना पड़ेगा ये बताओ। तुरंत टाइम लेता है, तुरंत बात करता है, समय नहीं है आपके पास में, आपने थोड़ी पहुंची की जैसी जब आप सही जगह पर आ गए, सही समय पर आ गए, थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी आपने जैसे किया मुश्किल हो जाएगी, तुरंत कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम ये कहते हैं देखो शरीर की कितनी चिंता है इसको, अभी हम ये कहते हैं अरे भैया देना था जेल सेंटर के अंदर एक डॉक्टर आए हैं आत्मा के, आत्मा का इलाज करने के लिए, और दूसरे सिटी में है तो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं आत्मा का, हम अपने यहाँ भी बुला लेते हैं सामूहिक इलाज कर लेंगे कि हाँ देखते हैं आपने कहा है थोड़ा सा मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो दोनों मीटिंग बुलाते हैं देखते हैं। देखो आप शरीर का उपचार कराने में जहाँ $50,000 लगेंगे उसके अंदर बच्चों से भी नहीं पूछता है। घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद में बात भी घर पे ऐसा ऐसा हो गया है और 15 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसा जी क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने इसकी सेक्टर की शादी है, बेटी की शादी है, घर में शादी है, ऑपरेशन के लिए भी कोई बात नहीं, मेरे बिना की शादी हो जाएगी। सीजन का टाइम है अभी तो कितना, अभी अभी ठीक तो समय है अपना, आप अस्पताल में जाकर के पड़े रहोगे, कौन संभालेगा क्या होगा, तो प्यार करने बाद में जा रहे हैं, नहीं प्यार करने बाद अभी होगा, मतलब उसमें तो कितना भी खर्च हो कोई ऑप्शन नहीं करता है, तुरंत डिसीजन लेता है। और यहाँ आत्मा की बात होती है तो कहता है दूसरों के बारे में, देखते हैं कितना पैसा कितना खर्चा हो जाएगा उसके अंदर, देखते हैं बच्चा पिछले डॉलर इकट्ठा करेंगे कौन से, फिर डॉलर तीसरे डॉलर, फिर देखते हैं कौन देगा, फिर वो हो पाएगा तो फिर व्यवस्था, फिर टाइम नहीं है, वास्तव में आप वहां तो रहे लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास में, आपको सुनना किसकी रुचि है और सुनना चाहता है। आप अपने आप की रुचि के बारे में कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं सुख के बारे में बात कर रहे हैं, आपके सुख के बारे में बात कर रहे हैं, सच्चे सुख के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो बात करना चाह रहे हैं ये बात साधारण नहीं है, ये बात आपके परमानेंट सुख की बात हो रही है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये डीप में छोटी मतलब मत समझना हमारे पास में, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, साधारण बात नहीं। अपने आप की जो रुचि की बात कर रहे हैं आप जरूर में अपने आप कीजिए, मेरी रुचि कितनी है, कितने काम छोड़ करके आप यहाँ आते हैं, थोड़ा सा कोई काम होता है तुरंत भागते, एक जगह पर आपका सम्मान होना हो और दूसरी जगह पर प्रवचन सुनने का समय होना हो आप किधर जाएंगे, आपके लिए सम्मान पहले, आपके लिए परिवार पहले, आपके लिए बिजनेस पहले, आपके लिए दुकान पहले, आपके लिए क्लाइंट पहले, आपके हिसाब में सब शामिल है वो लोग, उसमें हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं और फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हैं, किसकी बात है हमारी, किसको धोखा दे रहे हो आप दूसरों को, तो जो दोस्तों दो देव या नहीं दो लेकिन अपने आप को धोखा दोगे तो कहां जाओगे, अपने आप को छोड़ रहे हैं हम, अपने आप को धोखा दे रहे हैं अपने परिणामों से, अपने विचारों से, अपने घर चिंतन से, कोई रुचि नहीं है दिखावा करते हैं हम, कोई आत्मा की नहीं है फिर दिखावा करते हैं हम, फिर कोई बात ध्यान आती है हम जैसे हैं वैसा दिखाते नहीं और जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा, कितना आत्मा के बना हम शो करना चाहते हैं, कितना प्रदर्शन करना चाहते हैं, कितने सभ्य बन करके हम रहना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं दूसरों के सामने, आप हैं कैसे अंदर से, अपनी रुचि की बात की है अपने दर्शन के संदर्भ में, जानो तो रुचि होगी, पहचानो तो रुचि होगी, अपने को जाने बिना अपने को पहचाने बिना रुचि होती नहीं, देखिए आप क्या कह रहे हैं से भिन्न, अब इसमें सब बातें हो गई, कुछ से भिन्न की रुचि की बात कर रहे हैं, बंगले के भिन्न आत्मा की रुचि, गाड़ी के भिन्न आत्मा की रुचि, पंद्रह में सारी पंद्रह आ गए ना, किस किस की रुचि है हमारी, इंश्योरेंस के नाम पर बहुत पैसा लगता है यहाँ ऐसा सुना ही, कितना कितना पैसा खर्च कर रहे थे, हजारों डॉलर दे देते हैं साल के इंश्योरेंस के लिए, हजारों डॉलर साल के हम इंश्योरेंस के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं किसी को, अब किसी को किसी से पैसे से कोई मतलब भी नहीं है, हम तो सिर्फ आपकी रुचि की तुलना करना चाहते हैं, हमने कहा कि वो एक किताब है कौन सी, गांधी जी के प्रश्न श्रीमद जी से बटवाइए हमारे को, तो कितना पैसा लगेगा, डिस्काउंट देंगे सबसे इतनी सारी एक बात देंगे, कुछ तो कंसेशन होगा, कुछ तो कंसेशन देखता है, इतनी सबसे किताब है अपने रुचि की बातें, और 5,000 का जो कितने कितने 500 डॉलर के आईफोन खरीदना था एकदम जाता है, और कितने कितने डॉलर आता है, कितने तक आता है $1,000 का, ओके 2 मिनट में निकल आता है उसमें, उसमें रिकॉर्ड नहीं आता हमारे को, दुकानों पर जाकर के जेब खोल देते हैं, हम सोचते ही नहीं है राजे की है हमारे को, उसमें मरना जबरदस्ती उसमें बुद्धि लगा रखी है, क्या लेना देना क्या होगा उसे, सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए देह के लिए, लेकिन यहाँ ये कह रहे आत्मा का श्रृंगार किससे होता है, देह का श्रृंगार किससे करने का प्रयास किया, और फिर वो भी कितना भी श्रृंगार कर लो अर्थ तो बचवा साथ छोड़ना ही, देह ये कहती है कि देख ये तो मेरे लिए टाइम बहुत देता है, अच्छी बात है मेरे लिए टाइम देना है, आत्मा से कह रही इतना टाइम देता है, एक बात समझ ले तो कितना भी कर ले फिर मैं ज्यादा लंबे समय से बात नहीं दे पाऊंगी, अब फिर भी हम इतने मूर्ख वाले फिर रहे हैं, इसी इसमें अपनापन कर रहे हैं, इसलिए आज्ञा ने उन्हें बाह्य भावनाओं में अशुद्धि की भावना नहीं की, दोनों तरह से चिंतन करने की बात कही है। आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करो तो उससे रुचि हो गए, और शरीर के स्वरूप के बारे में चिंतन करो तो उससे रुचि टूटे। तो शरीर की आंतरिक दशा के बारे में चिंतन करो और आत्मा के गुणधर्म आदि के बारे में चिंतन करो तो उससे रुचि होती है। ये सब जीव की जो चर्चा है तो जीव में आत्मा की ही चर्चा है खाली, मतलब अपन जो आत्मा के बारे में जो भी बात कर रहे हैं वो सब जीव तत्व की ही चर्चा है। इनको जैसा जागरूक होगा जो का क्यों, किसी का व्याख्या कर चुका हूँ, जो का क्यों मतलब जैसे का तैसे, जीव तो जीव सही तो ही, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता रहता नहीं। जो का क्यों सर मानो, और ऐसे प्रदान करने वाले को
समकित व्यवहारी है, सोई समकित व्यवहारी दृढ़ो।
इनको सामान्य और विशेष रूप से आप सुनो और अपने हृदय में इनके प्रति दृढ़ प्रतीति करो, ऐसे बात कह रहे हैं। आपकी श्रद्धा आपकी दृढ़ प्रतीति इनके पास में होनी चाहिए। अब स्वरूप सबसे पहले जीव तत्व का स्वरूप बताते हैं। हम सात तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन सा है, जीव तत्व। नौ पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ जीव पदार्थ। व्यवहार से समझा रहे हैं क्योंकि समझने के लिए व्यवहार काम आता है, नित्य स्वरूप बात समझ आने के लिए। भेद कथन व्यवहार का, अभेद कथन नित्य का। भेद समझने के लिए और अभेद उस वस्तु में समा जाने के लिए। कभी भेद करके आत्मा को समझाते हैं, आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं, डरना नहीं कि कितने प्रकार की आत्माएं होती है। आत्मा सुनते ही आपको क्यों लगता है कितने प्रकार की आत्माएं होती है। जो भी जंतरवासी के दिल खतरनाक नहीं होते, वो लोग कदाचित आपको डराने के लिए आए रूप बना करके, तो भी वे बदसूरत नहीं होते क्योंकि देवगति के जीव बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, ये अलग मैटर है, ये अलग बात है कि वे देव यदि असली रूप में आपके सामने आ जाए तब भी आप डर जाने, इतना सुंदर होते हैं देवगति का कौन सा रहती है। डरने की बात नहीं, आत्मा है, सभी लोग सब समान है।
बहिरासम साजे जान सजी अंतरासम रूजे परमासम,
नहीं नहीं,
बहिरासम अंतरासम परमासम जीव तिना है, जीव जीव को एक गिरे बहिरासम सतमुदा है।
क्या कह दिया, तीन नंबर का चंद है, कहां से शुरू हो रहा है, चार नंबर का चंद, कौन सा नंबर का है, चार नंबर है ना, तीन तक पढ़ चुके ना अपन, हाँ चार नंबर का है।
बहिरासम अंतरासम परमासम जीव त्रिधाने, जीव जीव को एक गिने बहिरासम सतमुदाने। सूतम माध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी, द्विविध संग दिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ज्ञानी।
दो प्रकार की आत्माओं की बात बता दी, तीन वेद बताए पहले, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा, तीन प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कहते हैं, बहिरात्मा कौन होते हैं, बहिर माने बाहर में, आत्मा माने आत्मा का स्वरूप जो बाहर में समझते हो वे हैं बहिरात्मा। जो बाहर में आत्मा मानते हो, जो बाहर में आत्मा का स्वरूप मानते हो, जो बाहरी पदार्थों में, जो शरीर आदि संयोगों में तन्मयता रखते हो, एकल बुद्धि रखते हो, अपना पर रखते हो, कि कौन है, बहिरात्म, उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। इन्होंने परिभाषा क्या बताई बहिरात्मा की,
देव जीव को एक गिने बजीरा तब तक बुधा है।
कोई आपकी बात आगे शरीर आत्मा को एक मानने वाली लगता है ना ऐसा अपने कितना भरोसा नहीं होता हमारे हाथ उठाते हैं रुट जाता है आप कहते हो आत्मा शरीर आना लगे दो द्रव्य स्वतंत्र है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता है साफ साफ तो दिख रहा है मैंने हाथ उठाया तो हाथ लिया तो मैं करता करता नहीं हूँ क्या ऐसा ये कह रहे कि भाई आत्मा बंदा रख रहे हम अपने आप की बात कर रहे हैं हम लोग जो है हमारा जैसा शरीर के प्रति अपनापन दिखाई देता है वही तो बहिरात्मा बना है और ये जो अपनापन है ये शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उनसे हम इसका भेद नहीं कर पा रहे हम इतने तन्मय हो गए हैं शरीर के पास में इतने तादात्म्य हो गए हैं शरीर के पास में कि मैं शरीर से भिन्न हूँ इस बात की अनुभूति नहीं हो पा रही क्या कैसे अनुभूति हो अगर हम उठना चाहते हैं तो उठ जाते हैं बैठना चाहते हैं तो बैठ जाते हैं चलना चाहते हैं तो चल लेते हैं हाथ उठाओ नीचे करो उंगली उठाई ऐसे करी ऐसे करी देखो ये उंगली की दी है ना अब मैं चाहूँ फेड़ी कर लेता हूँ मैं चाहूँ फेड़ी कर लेता हूँ मेरे हाथ में तो सही बात है आपके हाथ में आपने सीढ़ी से फेड़ी करना आपके हाथ में है कि नहीं सेवा नहीं कर सकते क्यों क्यों नहीं कर सकते निवर्तन क्यों नहीं कर सकते जिधर इसकी होने की योग्यता है उधर ये होती है और इसके होने की योग्यता और हमारे विकल्प दोनों मिलकर के हमारी मान्यता का पोषण करते हैं मिथ्या मान्यता का विकल्पों के अनुसार काम होता हुआ दिखाई देता है तो ये कहता है मैंने किया और विकल्पों के अनुसार नहीं होता है तो कहते हैं क्या करूं हो गया इस तरह कोई व्यक्ति आगे उपाध्याय होता रहता है चलता है ना मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तीन चार दिन चलता है वीक में तो भाई लोग आते हो और बहुत छुट्टियां करते हो बार बार में बीमार पड़ जाते हैं आप उनसे कहो क्या तुम बहुत बीमार पड़ते हो इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हो बार बार में बीमार क्यों पड़ जाते हो तो मैं क्या करूँ मैं बीमार थोड़ी ना पड़ना चाहता हूँ दुनिया में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहता तो बीमार ही हो जाता है इसका मतलब ये है कि शरीर के ऊपर मेरी चल रही नहीं है चलती तो है दिख रही है साफ साफ में अरे पूर्व पुण्य की वजह से जितना निमित्त संबंध दिखाई देता है उसमें तुझे कर्ता मन का भ्रम हो जाता है जीव जीव को एक गिने बहिरा कम तक मूर्ख मुदाय बने मूर्ख है देव और आत्मा को एक गिनने वाले वही आत्मा है वे मूर्ख है अज्ञानी है संसार परिवहन करने वाले हैं इसलिए हम इस मान्यता को तोड़े इतना भरोसा नहीं करे इन चीजों को देखो ना जब जब कोई काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तब तब आप विचार कीजिए कि मेरे काम से मेरे हिसाब से नहीं हुआ है माने जब होता था तब भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ सच बात यह है या नहीं है ऐसा होता है कि किसके हिसाब से चल रहा है ये शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता इस शरीर को चलाने वाला एक कर्म है जिस कर्म को आठ कर्मों में नाम दिया है नाम कर्म आठ कर्म है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोचर तो जो नाम कर्म है नामकर्म का काम क्या है ये नामकर्म क्या करता है ये नामकर्म शरीर की व्यवस्था है जितने शरीर संबंधी काम होंगे ये सारा का सारा काम नामकर्म के पास में है ऐसा समझ लीजिए पिछले भाव में हमने नामकर्म को कॉन्टेक्ट दिया था और जैसा उसके सामने हमारी जीव हुई थी कॉन्टेक्ट हुआ था उसके अनुसार ही काम करता है कॉन्टेक्ट दे दिया हमारी टीम लकी हो गई सब कुछ हो गया और उसके बाद में हम उसको कहेंगे नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेकिन बंद कर दू अब लकी हो गया था पहले बोलना चाहिए था पहले सोचना चाहिए था अब तो जैसी चीज हुई ना उसके अनुसार काम होगा अब ये नामकरण की शरीर के बाद में जी रही है और हम भी करते हैं यार बात कर रहे हैं यार इतने क्यों जा रहे फिर भोले बने रहते हैं जैसी अपनी जिंदगी में वैसा काम होगा नहीं। पिछले जन्म पिछले जैसा नामकरण बांधा था काम में सभी तुमने इतने लोग हैं हम लोग सबके दो आगे हैं सबके दो कान हैं सबके कोई नाम दिखाई देता है वो मुंह है और सबके सर में बाल है कुछ कुछ छोड़ कर तो लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है पिक्चर नाम नाम कान में होते हुए सबकी जगह इज्जत ही नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है सबकी जगह इज्जत ही ये अंतर जो दिखाई दे रहा है ये अंतर कौन है कौन करता है इस अंतर को इस अंतर को कर्म कर रहा है इस अंतर को नामकरण कर रहा है इसकी व्यवस्थाएं नामकरण के अधीन है आगे कैसे होना हाथ कैसे होना उंगलियां कैसी होना कलर कैसा होना कितनी होना उंगलियां दांत कैसे होना कल्चर लेना बाल कैसे होना कितने बालों का सफेद हो जाना कितनों का सर में टिके रहना कितनों का उड़ जाना कितनों का जल जाना कब किसका कितना चले जाना सारी व्यवस्थाएं सब नामकरण के बाद में अब तुम्हारी टेंशन लेता है अब क्यों टेंशन ले रहा है मेरा मतलब की देखो ये कर्म प्रॉपर्टी भी ये बात को बताती है कि तुझे शरीर की तरफ चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे शरीर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है शरीर की व्यवस्थाएं हमने संभाल रखी है तुम आत्मा मुझे हो ठीक है कर्म ये सब जाए हम देखते रहते हैं कि शरीर शरीर की तरफ ये बहिरात्मा बने हैं ये जो हमारे जो कार्य बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है इसी का नाम मिथ्यात्व है ये हमारा मिथ्या भ्रम है हम कल के बैरात्म के संदर्भ में भी और अंतरात्मा परमात्मा के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम सभी तत्वों का स्वरूप समझ कर आत्मा का स्वरूप समझ कर स्वरूप समझ कर उसकी रुचि और श्रद्धा पूर्वक मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाए और मुक्ति की प्राप्ति करें इसी उत्तर भावना अभी कल जाएंगे ना क्या चाहिए बताया ना आपको ये प्रकरण अपन और इसको थोड़ा मैं क्लियर करूंगा जिससे आपको ये सारी बातें और ज्यादा क्लियर होंगी।